नमस्कार श्रोताओं, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। मोबाइल वाणी की पहल पर सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं से कितना सीख रहे हैं हम। जिस तरीके से निरंतर सड़कों पर हो रहे हादसे और न जाने कितने लोगों ने अपनी इस दौरान जाने गंवाई है, और इसी को लेकर हमारा आज का विषय ही यही है कि सड़कों पर होते हादसे से कितना सीख रहे हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का मोबाइल लाने पर स्वागत करता हूँ। हमारे साथ एडवोकेट मधुकर जी गायकवाड़ सर जुड़े हुए हैं, और साथ ही बिचुआ से सरपंच शिवराम जी जुड़े हुए, शिवराम जी बन। सर, दोनों मेहमानों का मोबाइल लाने पर स्वागत सर आपका।
धन्यवाद सर, नमस्कार
सर। मेरा सबसे पहला सवाल सर आपके आपसे है गायकवाड़ सर, कि सड़कों पर होते हादसों से कितना सीख रहे हैं हम सर?
देखिए, जहाँ तक सीखने की बात है तो मेरा उसमें दृष्टिकोण है कि हर व्यक्ति को अपना जीवन का मूल्य पता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में भी कई घटनाएं हो जाती हैं, तो उसके लिए तो हमको सावधान रहना ही है, लेकिन हम न चाहते भी कई बार सामने वाला हमको ठोक देता है, कुछ करता है, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। तो उसमें व्यक्ति को अपनी जान का तो महत्व है ही, लेकिन कई बार अनजाने होता है। उसके पीछे का रीजन मैंने देखा कि जो माल का परिवहन होता है, जैसे छिंदवाड़ा से यदि गोभी की सब्जी भर के जा रही है कुछ जा रहा नागपुर, तो उसके पीछे की स्पीड का कारण मैंने देखा कि उनको इनाम मिलता है सर, उसमें कितना जल्दी माल पहुंचेगा उनको इनाम मिलता है। अब उस एक बार मैंने देखा भी था कि इलाहाबाद के कुछ ट्रक थे, मैंने उनको रोका था, अभी बाजार जोड़ से उनको दो चार ट्रक वाले थे, मैंने कहा भाई साहब आप थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड कम रखिए, ताकि हम लोग भी चलते हैं। अभी एक डंपर चलता है, ये डंपर वाले तो सर आतंक फैला के रखा है, जो रेत के डंपर चलते हैं इन्होंने रोड से तो आतंक फैला के रखा है। रोड में इतने गड्ढे हैं कि गाड़ी हिसाब से चलना पड़ता है, दिल्ली में पहाड़ों ना संसद चलता हूँ, हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन एक डंपर वाले जो है उनको मैंने रोक के कई बार टोका भी कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी करके, तो थोड़ी देर के लिए तो ठीक है। मैंने कहा जब भाई रोड में गड्ढे पड़ गए, बरसात का समय है और आप और उसमें धूल पड़ी और आप बेधड़क से भगा रहे हो, धूल भी नाक में जाती है, तो इसके पीछे का रीजन है कि हमारी तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सबसे बड़ी बात हर चीज प्रशासन नियंत्रण नहीं कर सकता। हर चीज पे नियंत्रण का सबसे अच्छा दायित्व कि हम अपनी व्यक्ति की जिम्मेदारी समझ ले, ट्रक वालों को भी अपना समझना चाहिए कि भाई हम लोग चला रहे तो वहाँ बाकी लोग भी चलते हैं, लेकिन ये लोग माल परिवहन को जल्दी करने के लिए, क्योंकि इनको इनाम मिलता ना पास, तो उसके चक्कर में ये लोग स्पीड बढ़ाते हैं। और दूसरी चीज क्या हुई कि अभी इस बार हमारे यहाँ जो 36% अधिक वर्षा हुई है संसद इलाके में, उससे हमारी सड़कों की हालत इतनी खराब हो गई है कि सड़कों पे चलना मुश्किल हो गया। अभी मैं बजाज जोड़ और पिपला के बीच जब चलता हूँ तो जामसावली मंदिर के बीच इतने गड्ढे कि कई बार गड्ढे दिखते नहीं, पानी भरा रहता, तो कई बार हम लोग को भी दिक्कत हुई है, लेकिन अब डेली डेली चलने से हमको पता हो गया कि कहाँ गड्ढा है क्या है, लेकिन बहुत दिक्कत होती साहब उससे, बहुत दिक्कत है। सीखने की कोई बात ही नहीं, इसमें तो क्या बोले समझ में नहीं आता कि इसमें सीखना क्या, बस अपने को ही अपनी जान की परवाह करती है, सावधानी से चलना पड़ता है। लेकिन जो ड्राइवर है खास करके रेत के डंपर, वो इलाहाबाद से जो ट्रक आती यूपी की जो माल परिवहन करती, इनको थोड़ा सा प्रशासनिक नियंत्रण की आवश्यकता है ताकि सुरक्षित होगी चले। और अभी खास करके जब गड्ढे पड़े हैं सड़कों में, तो उस स्थिति में तो इनको ध्यान से चलाना चाहिए, उनको बेधड़क चलाते।
सर, मेरा सवाल दूसरा भी आपसे है कि निरंतर बीते 3 वर्षों से हेलमेट नहीं लगाने के कारण 3,800 लोगों ने जाने गंवाई है, और साथ ही जो कार्यों में सीट बेल्ट नहीं लगाने से 1,750 से अधिक लोगों ने जाने गंवाई है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस आंकड़ों को लेकर?
देखिए, ये थाना पुलिस जो पुलिस थाना संसार में दुर्गेश सिंह है, जो अपने अभद्र व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, पुलिस वाले हैं, मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी चालान बनाते समय, मैंने उनका थाने में जाके टीआई साहब का मान सम्मान भी किया था कि बहुत अच्छा। लेकिन होता क्या साहब, जैसे दुर्गेश सिंह जो है ना, पूरे संसार में एक यादव जी है और दुर्गेश जी, ये यूपी से यहाँ पोस्टेड है, ये लोग यूपी के है, बिहार के यूपी के, और इनका पब्लिक के साथ जो व्यवहार रहता है, इनको जॉब नहीं करना, ये वसूली वाले अधिकारी मतलब कर्मचारी है, तो दुर्गेश सिंह तो इतना अभद्र व्यवहार करता है कि अब देखिए आदमी चाह के भी कई बार ना जानबूझ के इनकी वजह से हेलमेट नहीं पहनता। हाँ, अब मान लीजिए किसी कारणवश छूट गया हेलमेट या नहीं पहन पाए, तो आपका दायित्व तो क्या है, केवल चालान काटना है, आपको जो चालान बनता काट दीजिए। लेकिन ये जिस तरीके से बदतमीज से बात करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता के प्रति कोई लगाव नहीं है। मैं उनको बोलने भी गया था कि भाई साहब आप केवल ड्यूटी मत निभाइए, लोगों के साथ जुड़िए, पर वो भग गए थे उस समय, थाने में आए नहीं थे। यही साहब को बताया था कि ये इस तरीके से लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। पुलिस वाले केवल एक जांच एजेंसी है, आपका दायित्व बनता है चालान काटना। अभी पिटला की चौकी में एक पांडोला का ट्रक था साहब, एक धीरज सिंह ठाकुर साहब थे, सब इंस्पेक्टर थे, पता नहीं क्या थे, इतनी शराब पी के थे, वो पूरा स्टाफ शराब पी के था, और वो आदमी को चालान के नाम पे इतना मारा था उन्होंने, तो हमने शिकायत की थी उसकी। दुर्गेश सिंह भी उसी में से एक है कि ये अभद्र व्यवहार करते थे, इससे कई बार पब्लिक इनको सपोर्ट नहीं करती, और पब्लिक के साथ ये लोग अच्छा, मतलब कोई भाई सामान्य व्यक्ति कोई अपराधी तो होता नहीं, जो बड़े बड़े ट्रक चलते रेत के उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, और एक आदमी साधारण सा कोई हेलमेट ना पहने तो उनके ऊपर इस तरह से व्यवहार करते, तो आधा अपराध बनाने में तो पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है ना। रही बात हेलमेट की, तो कई बार क्या होता है साहब की कुछ लोगों को दिक्कत होती है, जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं यदि हेलमेट पहनूं तो मेरी जो गर्दन की नसें बड़ा अजीब टाइप का लगता है, मैं अनकम्फर्ट महसूस करता हूँ, तो मैं पहनता नहीं। हालांकि मेरी गाड़ी की स्पीड में ज्यादा वैसे भी नहीं रखता, धीरे चलता हूँ, साइड से अपनी स्पीड चलता हूँ, तो हालांकि हमको हेलमेट पहनना चाहिए। जैसे मैं फोर व्हीलर चलाता हूँ तो मैं बिल्कुल सीट बेल्ट लगाता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे बॉडी को कोई दिक्कत नहीं। तो पर कई बार तो ये भी हो गया कि आप हेलमेट भी लगा के है, सीट बेल्ट भी लगा के है, उसके बावजूद भी सामने वाला कुछ सुन आ रहा है। अब इन ट्रकों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, कई ऐसे ट्रक है जिनका फिटनेस नहीं है, कई बसें अभी देखिए मोगा साइड एक बस गिर गई थी, स्टीयरिंग फेल हो गया था, वहां पे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी, और एक हेलमेट क्या ना पहने तो बड़ी कार्रवाई होती है। तो ताज्जुब लगता है यार, इतने बड़े बड़े ओवर लोडेड ट्रक चलते जिनके वजह से एक्सीडेंट को बढ़ावा मिल रहा है, और बात हेलमेट की आती तो वो तो कहीं समझ में नहीं आता। हाँ, पहनना चाहिए सुरक्षा के लिए, ठीक है, लेकिन ये पुलिस वाले खासकर दुर्गेश सिंह तो बिल्कुल खतरनाक प्राणी बन गया हमारे सांसद थाने के लिए। जी
जी सर। शिवराम सर, आपसे मेरा सवाल है कि आजकल युवाएं इन यातायात के नियमों का पालन किस तरीके से कर रहे हैं, ये तो आप स्वयं जानते हैं, ऐसा युवाओं को क्यों देख रहे हैं आप, ऐसा ही क्यों हो रहा है युवाओं में?
ये खासकर युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि वो डेली अप डाउन करते हैं कॉलेज के लिए, तो समय से पहले घर से नहीं निकलते लोग, और ओवरटेक के इसमें गाड़ी स्पीड से चलाते, खासकर आदिवासी अंचल हमारे बिछुआ ब्लॉक में जो अनफिट गाड़ी रहती थी उससे भी ट्रेवल करते, उससे भी कई बार दुर्घटना अत्यधिक हो रही है। वर्तमान जी जी आवाज नहीं आ पा रहा था।
ये बताइए कि अभी जो कानून आए हैं इसमें हेलमेट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना बोलिए, और लाइसेंस नहीं है तो 5000 रुपए का जुर्माना तक के प्रावधान रखे गए हैं, इसको जमीनी स्तर पर किस तरीके से देख रहे हैं और जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है?
जमीनी स्तर से तो अभी इनका क्रियान्वयन होना तो बहुत नहीं के बराबर है सर इसमें,
तो इसको लेकर युवाओं में और साथ में जो कानून बने हैं तो उसको एक मापदंड के तौर पर किस तरीके से देख रही है कि युवा किस तरीके से इस पर ध्यान देना चाहिए कि युवा ने? जी सुन पा रहे
युवाओं ने? जी जी सुन पा रहा था। युवाओं ने इन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और साथ ही अपने मित्र बंधु को भी अवगत कराना चाहिए कि जो भी योजनाएं शासन द्वारा चलाई जाती है तो उनका सोशल मीडिया के माध्यम से या जो भी हो माध्यम या गांव गांव से जुड़े जितने भी फ्रेंड हैं उनसे साझा करें और कड़ाई से पालन करें।
गायकवाड़ सर, सड़कों पर निरंतर हादसे हो रहे हैं, और एक बार देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 2021 में ही 48 हजार से अधिक हादसे हुए, उसमें से सर 12 हजार से अधिक लोगों ने जाने गंवाई है, जिसमें से सर ग्रामीण क्षेत्र में इसका आंकड़ा, मौतों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में 40% हिस्सेदारी रखती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, और उसके बाद भी सर 58% से अधिक लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में दुर्घटना के कारण मौतें हुई है, सर ऐसा क्यों?
देखिए सर, उसका रीजन मुझे लगता है हमारे हम सबकी अज्ञानता भी है, और उसके लिए सामान्य सी बात है कि जैसे कहीं टर्निंग है, अब मैं डेली पिछले 10 साल से चल रहा हूँ सड़क मार्ग से, तो उसमें मैंने देखा कि जो कुछ लोग हैं, अब जैसे टर्निंग आ गया तो हमको गाड़ी की स्पीड कम कर देना चाहिए और किनारे से चलना चाहिए, ताकि सामने से आने वाले ट्रक के हम लोग ना आए। पर होता क्या है कि हम लोग की स्पीड, वो तो भाई मशीन है, उसको जितना स्पीड में ले जाओ वो तो बढ़ेगी। तो ये होता क्या है कि स्पीड के चक्कर में जब टर्निंग आती है, तो टर्निंग में स्पीड को कंट्रोल नहीं करने की वजह से सामने से आने वाला वाहन उसको टकरा देता, और अधिकतर जो घटनाएं हुई है, अभी मैं मेहरा थापा का जो टर्निंग है वहाँ पता नहीं प्रशासन क्यों नहीं ध्यान देता, उसका साइडिंग जो था पूरा टूट टाट गया, कई ट्रक अभी तक तो मेरे को लगता 50-100 ट्रक उस गड्ढे में गिर चुके हैं, कई हालांकि कोई मौत नहीं हुई लेकिन कई ट्रक वहाँ जा चुके। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब वो सड़क को ऐसे ही छोड़ दिया गया, वो पूरा साइडिंग टूट गई है, कई ट्रक वहाँ गिरते हैं, तो जो बाहर से आने वाले जो लोग है शहरी मतलब दूसरे राज्यों के आए, तो उनको यहाँ की सड़क की कोई जानकारी होती नहीं है और वो उनको उसके उससे शिकार होते हैं। और ग्रामीण लोगों का मैं देखा कि वो लोग सर मतलब स्पीड का जो है उनका बहुत ज्यादा रहती है, वो कुछ भी सोचते नहीं है कि हमको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना चाहिए, कि हम चला रहे टर्निंग आ गई है तो हमको अपनी स्पीड कम कर देना चाहिए, उनकी स्पीड टर्निंग में बहुत ज्यादा होती है और सामने से आने वाला उनको ट्रक या कुछ वहां दिखता नहीं, सीधे ट्रक के नीचे जाते, जैसे पिछले बार एक बार रामापुना में हुआ था, एक बस के माध्यम से टर्निंग में एक लड़का सीधा घुस गया था, जामसावली पुलिया के पास नागपुर के जो लड़के थे वो पूरे के पूरे ट्रक के नीचे आ गए। तो उसका कारण है कि टर्निंग में इन लोग को स्पीड कम करके अपने किनारे से चलना चाहिए। तो ग्रामीण लोग ना स्पीड बहुत बढ़ाते, कई बार उनके आपस में भी टकराहट देखने में आई, तो उसका कारण है बहुत स्पीड में बढ़ाते। और दूसरी चीज, परिवहन की सुविधा न होने से ग्रामीण क्षेत्र में एक मुख्य वजह है कि परिवहन का सुविधा नहीं होने की उनके पास टू व्हीलर है, तो उसमें दो दो तीन तीन चार चार लोग बिठा लेते, तो उससे भी उनका संतुलन नहीं बन पाता, तो मेन वजह ये भी बनता है। दूसरी चीज, सड़कों की हालत तो ऐसी है कि वो उसी से भी गति गति तो खैर कम हो ही जाती, लेकिन उसमें ये कि बैलेंस नहीं बनता और कई बार शिकार मतलब हो जाते हैं। और हमारे यहाँ जो स्पीड ब्रेकर बने हैं उसमें कोई संकेतात्मक चिन्ह नहीं रहता, अभी देखिए ये घोघरा हमारे पिपला के आगे वहाँ बना दिया स्पीड, वहाँ कोई संकेतात्मक चिन्ह नहीं, रात को दिखता नहीं है, कई बार कई महिलाएं वहाँ गिर चुकी है। ये मतलब रोड की सुरक्षा केवल व्यक्ति की तो जिम्मेदारी है, हमको तो सावधानी रखना ही है, लेकिन थोड़ा सा सार्वजनिक हित में है प्रशासन का दायित्व, तो क्योंकि हमने जिम्मेदारी सरकार को दी है, सार्वजनिक व्यवस्थाओं को दी है, अब वहाँ पट्टा लगाना चाहिए। मैंने वहाँ के पिछली बार सरपंच ने चुना पोता था, मैंने उनको मैसेज भी किया था कि साहब चुना पोतोगे तो वो तो मिट जाएगा पानी से, आप उसमें सफेद वो रंग मतलब जो सफेद कलर रहता है वो लगा दीजिए पेंट, ताकि वो मिटेगा नहीं। तो उससे क्या होता है, दूर से दिखता है। अब वहाँ पे एक तो ढलान है, ढलान से सीधा नीचे उन्होंने ब्रेकर बना दिए, और स्पीड जैसे ही कोई आता है ढलान पे दिखता नहीं है। और दूसरी चीज क्या था, अभी घोघरा के पास देखिए उन्होंने नाली बनाई कि नहीं बनाई पता नहीं, पूरा पहाड़ का पत्थर वाला पानी इधर आता रोड पे, तो उसमें बारीक बारीक पत्थर सड़क पे आ गए। मान लीजिए आप रात के समय आ गए, आपका मतलब कई बार सामने से ट्रक आता आपको नीचे का कुछ दिखता नहीं, तो कई बार ये होता है कि वो पत्थर छोटे छोटे पत्थर भी आदमी को फिसलना देते और आदमी गिर जाता है। तो अब देखिए यहाँ क्या माने अब आप बताइए, कई बार वो भी चीज हादसा बना देती है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगता है कि सुरक्षा अपनी है। अब देखिए पुलिस को ये अधिकार दे दिया है कि भाई अभी जैसे उस दिन मैंने न्यूज में देखा था कि पीछे बैठा व्यक्ति भी चालान मतलब सीट बेल्ट लगाएगा, ठीक है अब ये तो लगाएगा, लेकिन अब बताइए मान लीजिए कभी गलती से नहीं लगा तो पुलिस कमाई का साधन बना। मैं अभी महाराष्ट्र कई बार जाता हूँ, वहाँ की पुलिस को ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसा वसूलने के लिए खड़े रहते सड़क, बस अपने एमपी में तो थोड़ा चल जाता है लेकिन वहाँ तो ऐसा लगता है कि ये कई बार हम लोग शिरडी टूर भी गए बच्चों को लेकर, तो हमने देखा कि उनको उनको खाली पैसा वसूलना, बस वो बोलते कि टारगेट दिया, हमको ये नहीं समझ में आता कि टारगेट इनको देता क्यों। इसलिए पिछले बार जो देशमुख साहब का जो कांड उजागर हुआ था कि करोड़ों रुपया उनसे मांगे जाते थे पुलिस डिपार्टमेंट से, तो अब समझ में आया कि पुलिस वहाँ की पैसा क्यों वसूल दे। हमारा आना जाना ज्यादातर महाराष्ट्र में, वो तो खड़े से रहते बिल्कुल। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे मेरी तो खास करके इनके साथ कई बार भिड़ंत भी हो गई कि भाई आपका काम केवल चालान काटना है, बदतमीजी नहीं करना है। अब हमको अपराधी तो है नहीं, सामान्य नागरिक अपराधी तो है नहीं। यही बात तो थाने थाना संसद में जो पदस्थ थे दुर्गेश सिंह, उनको भी समझाया था कि आप वर्दी और अपने सत्ता का दुरुपयोग मत करिए, जनता के साथ अच्छे से व्यवहार करिए। इन लोग जनता के साथ इतने अशिष्टपूर्ण व्यवहार करते कि सामान्य व्यक्ति की तरह डर जाता है। अब हम वकालत क्षेत्र से जुड़े हम जानते हैं तो इनको तो हम एबीसीडी पढ़ा देंगे, लेकिन होता क्या है कि अधिकतर लोग इनके व्यवहार की वजह से मतलब इनको सपोर्ट नहीं करते, इनकी बातें नहीं सुनते। और यूपी बिहार के जो लोग यहाँ पदस्थ हो चुके मध्य प्रदेश में, इनको तो लगाव ही नहीं, बस ये ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश शासन की मध्य प्रदेश पुलिस की छवि खराब करने में लगे। अभी वो दुर्गेश सिंह से मिले, वो आलोक कोई यादव था, उसने कोई ऑटो वाले को मार दिया था। तो बताओ बेचारा मजदूरी करेगा, अपना ऑटो चलाएगा, अब इनके सारे कानून इन्हीं लोगों के ऊपर होते, छोटे लोगों के ऊपर, बड़े लोगों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो ये एक विडंबना है समाज के अंदर की असमानता, तो फिर अपराध यहाँ से पैदा होता है, तो इनके आड़ में अपराध भी पैदा होते हैं और फिर पुलिस के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है।
जी सर, सर एक संक्षेप में आप एक सवाल का उत्तर दे दीजिए कि सड़क पर होती दुर्घटनाएं, इसमें ओवरलोडिंग कितना कारण है? क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार ओवरलोडिंग के कारण हुई दुर्घटनाओं में 87,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, और सर इसमें से करीब दुर्घटना में 2.5 लाख लोग घायल हुए हैं और 87 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ओवरलोडिंग यातायात में कितनी बड़ी बाधा बन रहा है और दुर्घटना का कारण?
बहुत बड़ी बाधा है साहब, और खास करके मैं अपने इलाके की बात करूं, अभी जैसे हमारे यहाँ से रेत भर के जाती है अमरावती में, तो लगता है कि ये आरटीओ लोग वहाँ खड़े रहते हैं रोड पे, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये लोग उस गाड़ी को जाने क्यों देते। वो उसका डंपर का जितना हाइट है उससे भी ऊपर वो रेत भरते हैं, और वो ट्रक जब चलता है नेम प्लेट भी नहीं रहती उसके पीछे। और आरटीओ को कई बार मैंने बोला कि साहब आप कार्रवाई क्या करते हो, तो बोलते कि साहब आपको तो पता है कि हम गाड़ी उठाते हैं तो फिर कौन आता है, राजनीतिक कौन आता है। आप सोचिए कहाँ से श्रृंखला जुड़ी, क्या पुलिस कानून बने हैं साहब हमारे यहाँ, लेकिन उसके क्रियान्वयन में बाधा कौन बन रहा है? देखो वो पुलिस वो अधिकारी लोग बोलते कि साहब आपको तो पता है कि कौन आएगा। अरे साहब वो ट्रक जाते हैं तीनखेड़ा, जो पास आउट रोड है तीनखेड़ा डेमंड वाला, उसमें तो ऐसा लगता है कि वो रोड का निर्माण सिर्फ ट्रक के परिवहन के लिए बना, रेत के पूरे बड़े बड़े डंपर भर के जाते साहब, आरटीओ की गाड़ी खड़ी रहती है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि उस डंपर को पकड़ते क्यों नहीं वो लोग। हाँ अब बताइए, वो उनको तो साइड से जो चल रहा है उसके कोई परवाह नहीं है, वो तो उड़ा देते साहब, सीधा उड़ा देते वो लोग, है ना। तब ऐसा लगता है कि ये अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर ये आरटीओ राजना पोस्ट है, वहाँ पे जो नाका ऊपर नीचे करता है वो लड़का हर ट्रक से 50 अलग लेता है, वहाँ सरकारी टैक्स अलग पड़ रहा है। अभी उस दिन में देखा कि मैं एक गाड़ी में खुद बैठा हुआ था, वो आरटीओ ऊपर नीचे जो झंडा करता है, तो वो आया बोले 50 रुपए दो, मैं बैठा था, मैंने कहा किस बात की पैसे ले रहे आप, मैं बोले लगते, मैंने कहा चल चल तेरे अधिकारी से बात करा। तो सोचो आप, वो ट्रक वाला यदि 50 रुपए दे रहा, 100 रुपए दे रहा, ऐसे एमपी पास करते बिहार पास करते कितने पैसे उसको देना पड़ेगा, अब वो कहाँ से निकालेगा साहब? वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, तो वो अपनी स्पीड बढ़ा के माल को जल्दी पहुंचाता है, और माल को जल्दी पहुंचाने के चक्कर में वो सड़क पे जो आए उड़ा देता है। तो उसके लिए देखो ये श्रृंखला पूरी जुड़ी हुई है। वो राजना टप्पर का जो आरटीओ ऑफिस है, ऐसा लगता है कि वो परिवहन की जांच कम वसूली ज्यादा करते, अब उसके आड़ में बहुत सारे लोग ट्रक वाले पैसा देते तो वो गाँव से निकालेंगे, फिर वो स्पीड बढ़ाते ताकि माल जल्दी पहुंचे तो इनको गिफ्ट मिले, और गिफ्ट लेने के चक्कर में फिर वो सड़क में जो आए। वो यूपी बिहार के जो ट्रक चलते वो आरटीओ को मैंने कई बार बोला कि सर इनकी स्पीड में कम करवाओ, थोड़ा सा ध्यान दो, तो वो अपने कहते कि आप गांव में ये लगा वो लगा ऐसा करते। तो मुझे ऐसा लगता है सर ओवरलोड तो है ही, ओवरलोड के साथ साथ हम खुद भी जिम्मेदार है इंसान, क्योंकि हमको ताजी भाजी खाने की आदत पड़ गई है, ताजी भाजी खाने के चक्कर में ये ट्रक ताजी भाजी पहुंचाने के लिए स्पीड बढ़ाते हैं। आप छिंदवाड़ा नागपुर रोड पे जो आइसर चलते हैं ना साहब, उनको देखिए कि लगता है कि साला रूह कांपती अपने पास से जाती। तो ओवरलोड ट्रक तो जिम्मेदार है ही, लेकिन वो गोभी वाले ट्रक और रेत के ट्रक, ऐसा लगता है कि आप आप अपने मौत के लिए सुरक्षित होके ही चलना पड़ेगा, अन्यथा ये आपको
सर इस सभी का समाधान के लिए हम सबको मिलकर क्या प्रयास किए जाने चाहिए अंत में और संक्षेप में सर?
देखिए सबसे बड़ा प्रयास है जनता, एक तो हम अपने सड़क पे चलते वो ध्यान रखें, दूसरी चीज हमको प्रशासनिक व्यवस्था के कानून के अंदर को जो नियंत्रण का जो काम है, अभी देखिए सर अमरावती से जो ट्रक चलते रेत के लिए आते हैं अपना, कई ट्रक के पीछे तो नेम प्लेट वो नंबर प्लेट ही नहीं है, अब इसके लिए कोई सामान्य व्यक्ति को अधिकार मिले है क्या? ये RTO के पास से ट्रक पास होता है साहब, तो अब देखिए यहाँ से RTO राजना लगाया तो उधर से बगते सर, उधर गाड़ी खड़ी रहती है RTO की, वो लोग गाड़ी का नंबर प्लेट क्यों नहीं देखते, अगर भी ये नहीं समझ में आया तो जिम्मेदारी इनकी भी बनती है। मैं तो कहता हूँ कि जिस परिवहन RTO का चेक पोस्ट है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर, इसके लिए जिम्मेदारी इनको ठहराया जाना चाहिए। दूसरी चीज हम भी कुछ नियम बने हैं उसका भी पालन करें, और चाहे हेलमेट हो सीट बेल्ट हो, और सबसे बड़ी बात आपकी स्पीड कम है साहब तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती।
सर ये गौ माताएं आजकल सड़कों पे बहुत अधिक देखी जा रही जिनके कारण कई दुर्घटनाएं हो रही, इसके ऊपर संक्षिप्त में सर?
नहीं ये बात तो सही, अभी संसर के जो लक्ष्मी नगर के पास इतनी गाय बैठी रहती सर, कई बार हम लोग भी कई बार दिखता नहीं तो कई बार सर ठुकने वाली स्थिति आती, क्योंकि मैं तो अभी डेली चलता हूँ इसमें सर, जिनकी गाय है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर, उनको सबक सिखाना चाहिए, मतलब सख्त व्यवस्था होनी चाहिए कि वो कार्रवाई वाली तो बिल्कुल नियंत्रण हो सर, पूरी गाय बैठी रहती सर कई बार दिखता नहीं है, कई बार गाय अपनी धाक से मार देती है, तो ये बड़ी दिक्कत है। और केवल गाय नहीं, अभी देखिए सिलेवानी घाटी में भी बंदर आके रोड पर खड़े रहते हैं, अब हम लोगों को उनको दया भाव नहीं दिखा, उनको अपन फल खिलाते तो उतारने खिलाते तो उस चक्कर में वो रोड पे आते, अभी देखिए वो खुद भी सड़क के हादसे के शिकार होते हैं और लोगों को भी सड़क का हादसे का शिकार बनाते, कई बार वो रोड क्रॉस करते समय अपन घुस जाते, तो इसके लिए हम भी मुझे तो ऐसा लगता है कि सर हम खुद जिम्मेदार बस।
जी सर, तो ये थे मधुकर गायकवाड़ सर, साथ में शिवराम जी जुड़े हुए थे जिन्होंने मोबाइल वाणी पर सड़कों पर होती दुर्घटनाओं से कितना सीखे हम विषय पर जानकारी साझा की। सर दोनों मेहमानों का मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी सर धन्यवाद सर, नमस्कार
छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद सर।